उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ना, वो साइक्लोस्पोरिन के एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये तो हम फर्स्ट एड से, मतलब जब हम पार्ट वन की प्रिपरेशन करते थे ना, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो साइक्लोस्पोरिन है ना, वो क्या होती है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। तो ये क्या करती है कि ये किडनीज के ऊपर इस तरह इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि नेफ्रोटॉक्सिक है। इस वजह से वी हैव टू बी कॉशियस, अगर किसी के अंदर कोई रीनल डिजीज़ है तो हम उसमें साइक्लोस्पोरिन किस तरह से देंगे, या देंगे भी या नहीं देंगे। तो इसमें इसके जो है ना, दो तरह के नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, एक अक्यूट और क्रॉनिक। ऑब्वियसली अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देंगे तो अक्यूट होगा और रिवर्सिबल होगा, लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देंगे तो क्रॉनिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। तो अक्यूट नेफ्रोटॉक्सिटी इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन वीक्स ऑफ इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट, और ये रिवर्सिबल होती है, डोज डिपेंडेंट होती है। और इसका इफेक्ट ये होता है, इस वजह से है क्योंकि ये एफरेंट आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है और EGFR को रिड्यूस करता है। इस वजह से ये एक्यूट नेफ्रोटॉक्सिटी कॉज करता है। बट इफ़ इट इज़ गिवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर इसमें क्रॉनिक नेफ्रोटॉक्सिटी प्रोड्यूस होती है एंड इट इज़ लार्जली इरिवर्सिबल। एंड वाई डज़ इट कॉज दिस नेफ्रोटॉक्सिटी, इट इज़ बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन्स। बिकॉज इट कॉजेज प्रोग्रेसिव आर्टीरियोलर हाइलेनाइजेशन, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ट्यूब्यूलर एट्रोफी एंड ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इट कॉजेज क्रॉनिक नेफ्रोटॉक्सिटी विच इज़ लार्जली इरिवर्सिबल। सो इट इज़ ऑल्सो डोज डिपेंडेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यूजली जब हम इसको 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए देंगे ना, तो इसमें क्रॉनिक नेफ्रोटॉक्सिटी ये कर सकता है। तो इसमें पर्टिकुलर कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं अदर देन द डोज एंड द ड्यूरेशन। वो ये है कि अगर हम ऐसे लोगों को देते हैं जो एल्डरली है, हैविंग एज ऑफ मोर देन 50 ईयर्स, देर इज़ अ प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन एंड और रीनल इम्पेयरमेंट, कनकॉमिटेंट ट्रीटमेंट विद दी एनसीड्स या दूसरे जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, तो ये एड ऑन मतलब करती हैं इन द रिस्क फैक्टर्स। तो इसमें जो है ना, हमने देखना है कि नेफ्रोटॉक्सिटी हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए हम उसके सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स को चेक करते हैं बेसलाइन पे भी आफ्टर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। तो सिंगल ये जो सीरम क्रिएटिनिन है, इट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ नेफ्रोटॉक्सिटी। तो इसीलिए ये क्रिटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम मॉनिटरिंग करते हैं तो हम क्रिएटिनिन लेवल्स को ज़रूर चेक करते हैं। तो वो आगे हम फिर मॉनिटरिंग में देखेंगे कि कितने कितने टाइम के लिए चेक करेंगे और आफ्टर हाउ मेनी वीक्स हम देखेंगे। तो ये तो पहला हमारे पास साइड इफेक्ट आ गया ना, कि हम चेक करते हैं नेफ्रोटॉक्सिटी ये करता है। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें ये चीज़ लिखी हुई है लाहौर वाले नोट्स में कि ये जो है ना, ट्यूबुलर डिसफंक्शन कॉज करता है। तो जब ट्यूबुलर डिसफंक्शन कॉज करता है ना, तो जो ट्यूब्यूल्स का अपना फंक्शन होता है ना, वो लॉस हो जाता है। मतलब कि ट्यूब्यूल्स में ये किस तरह डिसफंक्शन कॉज करता है, डिक्रीज मैग्नीशियम रीअब्जॉर्प्शन लीडिंग टू हाइपोमैग्नीसीमिया, डिक्रीज यूरिक एसिड सिक्रीशन लीडिंग टू हाइपर यूरिसीमिया, डिक्रीज पोटेशियम सिक्रीशन लीडिंग टू हाइपर कैलीमिया, और डिस्टल ट्यूबुलर एसिडोसिस कॉज करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया नेफ्रोटॉक्सिटी। उसके बाद हम आ जाते हैं हाइपर टेंशन, हेड एक, हाइपरलिपिडीमिया। जो हाइपरलिपिडीमिया, इट यूजुअली अकर्स विद इन 2 वीक्स ऑफ द ट्रीटमेंट इनिशिएशन एंड यूजुअली रिटर्निंग टू नॉर्मल ऑन विथड्रॉल ऑफ थेरेपी, मतलब कि रिवर्सिबल है। उसके अलावा मैलिग्नेंसी ये कॉज करता है, लिम्फोमास और नॉन मेलेनोमा स्किन कैंसर्स, यानी SCC। तो अगर कनकॉमिटेंटली पेशेंट ने प्यूवा थेरेपी भी ली हुई है ना, तो मोर देन 200 प्यूवा थेरेपी अगर उसके साथ हम साइक्लोस्पोरिन देंगे, तो इन देर इज़ अ वेरी मच इंक्रीज ऑफ द रिस्क ऑफ SCC। तो इस वजह से हम दोनों को कनकॉमिटेंटली नहीं देंगे अगर पेशेंट ने ऑलरेडी मोर देन 200 ट्रीटमेंट्स ऑफ प्यूवा ले चुका है। उसके अलावा जो दूसरे साइड इफेक्ट्स है, उसमें हमारे पास जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रिकोसिस, फटीग, GI डिस्टर्बेंसेस लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, न्यूरोलॉजिकल में ट्रेमर्स और पैरेस्थीसिया इन द हैंड्स एंड फीट। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो है ना ये हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपर कैलीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, उसके अलावा हाइपर बिलीरुबिनीमिया भी ये कॉज करा सकता है। तो ये सब जो है ना तकरीबन डोज डिपेंडेंट होते हैं, और जैसे ही हम डोज को रिड्यूस करते हैं तो दे बिकम इरिवर्सिबल।